Padmamansa Prajagacharya Sadarshala Sri Srimad Hindumayangeshala Abhijanan Bhakti Danda Swami Shala Prabhupada Maharaj Ki Sri Sri Gonathai Ki Sri Sri Radha Parthasadhi Ki Sri Sri Sitaram Lakshman Hanuman Ki Ram Navi Mahavatsav Ki All glories to the Samudra Devotee All glories to the Samudra Devotee All glories to the Holy. All glory to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyan Tivinandasya Gyanam Janashvakya Chakshuran Militanena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovestam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Nadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamlan, Shri Gurun Vaishnavamsta, Shri Rupam Sagrajatam, Sahagana Ragunatan Vidamtham Sajevam, Sadvetam Savadhutam, Parijana Saitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padan, Sahagana Lalita Shri Vishakham Samsam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Rana Kanta Nostate Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarbhyascha Kripa Sindhu Bhayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Aap sab bhakton ka hardik swagat Ram Naam ke shubh avsar par आप सब भगवान श्री राम की शुभकामनाएं को स्वीकार कीजिएगा। भगवान राम की। तो आज हम पूरे भारत में रामनवमी मना रहे हैं और जो इस्कॉन दिल्ली के भक्त हैं उनके लिए आज के उत्सव का एक खास महत्व है। आज से 10 साल पूर्व आपके इस राधा पार्थसाथी मंदिर का उद्घाटन हुआ था। आज से 10 साल पूर्व उस समय के हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था। वैसे तो इस मंदिर में 3 मुख्य विग्रह हैं, श्री श्री गौड़ताई राधा पार्थसाथी ललता विशाखा और सीताराम लक्ष्मण हनुमान। तो राधा पार्थसाथी जी की स्थापना प्रभुपाद जी ने की थी बंगाली मार्केट में, जब हमारा छोटा सा मंदिर था और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर बने, जहाँ से लोगों को ये वैदिक साहित्य का संदेश प्राप्त हो। तो आप सबके सहयोग से ये केंद्र का उद्घाटन हुआ था आज से 10 साल पहले, और पिछले 10 सालों में ये मंदिर तो चलते आ रहा है। भगवान की कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से कई और मंदिर भी खुल गए हैं दिल्ली शहर में, नोएडा में, पंजाबी बाग में, गाजियाबाद में, फरीदाबाद और ना पंछी। तो इस संसार का मूल उद्देश्य यह है कि भगवान का संदेश आगे पहुंचाया जाए, क्योंकि यही एक साधन है सुख शांति का। थोड़े समय में ही आप ड्रामा देखोगे, नाटक रामलीला, और पहली बार ये रामलीला प्रस्तुत की जा रही है भक्तों के द्वारा। पूरा कास्ट भक्तों का है, कोई प्रोफेशनल नहीं है इसमें, और क्योंकि पहली बार हमारे भक्त इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं तो तैयारी में थोड़ी देर लग रही है, और 15-20 मिनट तक वो तैयार होकर आ जाएंगे। तो आज रामनवमी है, बड़ा शुभ अवसर है। भगवान राम प्रकट हुए थे त्रेता युग में। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्म से किला निभावते भारत अभ्युदम धर्म से तदात्मनम सृजाम्य अहम्। कि मैं अलग अलग समय प्रकट होता हूं किस लिए, धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। और हमारे वैदिक साहित्य में भगवान के अवतारों का वर्णन है, तो श्रीमद् भागवतम में केवल संक्षेप रूप में 2 अध्यायों में भगवान राम के विषय में चर्चा की गई है। श्रीमद् भागवत का उच्चारण सुखदेव गोस्वामी जी ने किया था आज 5,000 साल पूर्व। परीक्षित महाराज को सूचना प्राप्त हुई थी कि 7 दिन के पश्चात उनका अंत आ जाएगा, तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा भागवत का संदेश ग्रहण किया। वैसे तो भगवान राम के विषय में रामायण के द्वारा आपको ज्यादा गहराई के साथ ज्ञान प्राप्त होता है, पर भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम के विषय में ये लीला सुनते आ रहे हैं हम बचपन से ही, और अनेक ग्रंथ हैं जिनके द्वारा भगवान राम की लीला प्राप्त हो रही है, तो मैं केवल संक्षेप रूप में ही भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करूंगा। पर भगवान राम प्रकट हुए थे त्रेतायुग के आरंभ में, और आज भी हम भगवान राम की लीलाओं का स्मरण करते आ रहे हैं। भागवत में कहा गया है जो व्यक्ति भगवान राम की लीलाओं के विषय में सुने, भगवान राम की लीलाओं की चर्चा करे, वो व्यक्ति के हृदय से ईर्ष्या द्वेष जो है समाप्त हो जाएगा और भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अद्वैत अच्युत मनादि अनंत रूपम ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं, पर इन सब अवतारों के विषय में आपको ज्ञान शास्त्र द्वारा प्राप्त होता है और हम केवल उनको ही अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं जिनका वर्णन शास्त्र में प्राप्त होता है। तो भगवान राम प्रकट हुए अपने भाइयों के साथ, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, पिता का नाम था दशरथ, और भगवान जब प्रकट होते हैं पृथ्वी पर तो अपनी अद्भुत लीला प्रकट करते हैं जिसकी तुलना कोई साधारण व्यक्ति न कर पाता है या कर पाएगा। हमें अफसोस होता है ये सुनने में कि हमारे देश के कई राजनीतिक नेता कहते हैं कि क्या प्रमाण है भगवान राम प्रकट हुए हैं। हमने कोई 2 महीने पहले पढ़ा था अखबारों में, एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता भारत का कह रहा था कि कोई प्रमाण ही नहीं है कि भगवान राम प्रकट हुए थे। बड़े अफसोस की बात है। तो भगवान राम प्रकट हुए थे और आज भी हम रामलीला की चर्चा करते हैं, रामलीला का स्मरण करते हैं, भारत में ही नहीं विदेशों में भी। अगर आप इंडोनेशिया जाओ, थाईलैंड जाओ, तो रामनामी के समय आज भी वहां रामायण काल के ड्रामा किए जाते हैं आज भी। तो भगवान राम स्वयं भगवान हैं और भगवान प्रकट होते हैं किस लिए? पतितों के उद्धार के लिए। और भगवान राम प्रकट हुए थे त्रेता युग के आरंभ में, पिता का नाम था दशरथ और भगवान राम स्वयं विस्तार करते हैं, अपने भाई भी प्रकट हुए थे और भगवान राम ने भी अद्भुत लीला प्रकट की थी, जैसे कि एक धनुष को तोड़ा जो इतना भारी था कि जिसको उठाने के लिए 300 व्यक्तियों की आवश्यकता थी। आज के वातावरण में कई बार लोग ये दावा करते हो भगवान के अवतार है, पर जब उनसे पूछा जाए कि आप ये दिव्य गुणों को, अद्भुत लीला को प्रकट कर सकते हो, तो प्रकट नहीं कर पाते। तो भगवान राम जैसे आप जानते हो, दशरथ की इच्छा थी कि उनके बेटे को राजाभिषेक हो और एक दिन पहले ही उनकी सौतेली मां ने दशरथ को याद दिलाया, याद है ना आपको कि आपने वचन दिया था कि मैं जो मांगूंगी वो पूरा करोगे। तो राजा क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कभी भी जो अपना वचन दे तो इसमें पीछे नहीं हटते। और जब कैकेयी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि आपका बेटा राम जंगल में जाए 14 सालों के लिए वनवास में, दशरथ ने और जब ये संदेश आगे अपने बेटे को दिया, बेटे ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। और भागवत में कहा गया है इस विषय में, जैसे आत्मज्ञानी व्यक्ति जब शरीर त्यागता है तो उसे कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसे पता है कि उसने जीवन का सदुपयोग किया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि भगवान शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें छह प्रकार के ऐश्वर्य हो, ऐश्वर्य सभाग्रस्य वीर्यसा यशसा श्रेया ज्ञान वैराग्य शैव सन्न भागा इतना। तो विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस व्यक्ति में ये छह प्रकार के ऐश्वर्य एक साथ प्राप्त हो उसी को हम भगवान कह सकते हैं। ये छह ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य से सभाग्रस्य सबसे धनी, सबसे वीर, सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा ज्ञानी और सबसे ज्यादा त्यागी वैराग्य। तो जब दशरथ ने कहा बेटे से जाओ बेगा 14 सालों के लिए वन में, बेटे ने ये नहीं कहा पिताजी लोग क्या कहेंगे, अयोध्या में पूरी तैयारी हो रही है, कल राज अभिषेक होने वाला है। बेटे ने ये नहीं कहा, बेटे ने वैराग्य को प्रकट किया, तुरंत ही तैयार हो गए जंगल में जाने के लिए। और कैकेयी होशियार थी, उसकी इच्छा थी कि उसके बेटे भारत का राज्य हो, और उसको ये चिंता थी कि अगर थोड़े समय के लिए राम वनवास में जाएंगे तो वापस आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा लंबे समय के लिए 14 सालों के लिए। तो भगवान कृष्ण भी जब प्रकट हुए थे उन्होंने अपने छह ऐश्वर्यों को प्रकट किया था, और भगवान राम भी जब प्रकट हुए थे तीर्थ के आरंभ में उन्होंने भी अपनी लीला में ये छह ऐश्वर्यों को प्रकट किया था। भगवान राम ने सेतु बनाया, अक्सर आप पत्थर फेंको तो डूब जाते हैं, भगवान राम की दिव्य शक्ति से किस प्रकार ये सेतु तैरने लगे, किस प्रकार भगवान राम की सेना पहुंची श्रीलंका, भगवान की सेना में कौन थे? केवल बंदर। और केवल भगवान राम और लक्ष्मण में धनुष चलाने की भी योग्यता थी, बाकी तो थे केवल बंदरों की सेना। और रावण की सेना, रावण शब्द का अर्थ है जो केवल दूसरों को कष्ट दे, और रावण की सेना में हर प्रकार के आधुनिक सुविधाएं थी, हथियार थे। और अंत में विजय किसकी हुई? भगवान राम की। तो इस विषय में श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक है दैविक और दूसरी है भौतिक। कुरुक्षेत्र के युद्ध में आप देखते हो कि दुर्योधन की सेना में अनेक प्रसिद्ध सेनापति थे, हर प्रकार की सुविधा थी, और पांडव की सेना में केवल स्वयं भगवान उनके समक्ष उनके साथ थे, और विजय किसकी हुई? पांडव की। तो जहां दिव्य शक्ति हो वहां असली ताकत है। और भगवान राम की सेना में जैसे हमने कहा केवल बंदरों की सेना थी। तो आज भी हम वातावरण में समाज में राम राज्य की चर्चा करते हैं, सच बात है, लोग राम राज्य की चर्चा करते हैं आज भी समाज में। क्या कारण है? श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान राम 14 साल वनवास में रहने के बाद लौटे अयोध्या में, जहां के उनके भाई भारत ने अपने मंत्रियों के साथ उनकी स्वागत की, और भगवान राम का जो शासन था वो आरंभ हुआ। भारत में ऐसी त्याग की भावना थी, जब उनके भाई गए थे वनवास में उन्होंने बड़ा सादा जीवन बिताया, और जब भगवान राम लौटे अयोध्या सा अनेक मंत्रियों के साथ उनका स्वागत किया, राम राज्य की चर्च। हरे कृष्ण। கிருஷ்ண. கே வாட்டர் क्या हो गया? हरे कृष्ण. तो भागवत में कहा गया है कि राम राज्य के समय पूरा समाज हर दृष्टि से सुखी था, कोई मन का कष्ट नहीं, शारीरिक कष्ट नहीं, प्रकृति का कष्ट नहीं. इसके अलावा हर प्रकार की आवश्यकताओं की प्राप्ति थी. और नित्य के समय भी व्यक्ति खुद चुन सकते थे, और अगर कोई व्यक्ति मृत्यु से बचना भी चाहे तो बच भी सकता था. हमारे शास्त्रों के अनुसार चार मुख्य युग हैं, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग. और सत्ययुग में लोगों की अवधि थी 1,00,000 साल, त्रेतायुग में 10,000, द्वापर युग में 1,000 साल और कलियुग में ज्यादा से ज्यादा 100 साल. तो हालांकि भगवान राम का शासन चल रहा था कब, त्रेतायुग में, समाज का वातावरण ऐसे था जैसे सत्ययुग बीत रहा है. पूरे समाज की प्रजा हर रूप से सुखी थी. तो इस विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं भगवतम के तात्पर्य में कि राम राज्य का सुख हमें आज भी प्राप्त हो सकता है अगर हम ये महामंत्र को स्वीकार करें और महामंत्र का उच्चारण करें. राम राज्य के समय अयोध्या की सड़कों को रोज धोया जाता था किसके साथ, गुलाब के पानी के साथ. रोज आज आप विश्व का सबसे प्रसिद्ध देश वॉशिंगटन में भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हर गली को, सड़क को धोएंगे पानी के, सादे पानी के साथ भी. पर अयोध्या की सड़कों को धोया जाता था किसके साथ, गुलाब के पानी के साथ. और भगवान राम स्वयं देखते थे कि हर चीज ठीक हो रही है, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं. जब भगवान राम ने अपना शासन आरंभ किया तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर अपने सारे गहने बांट दिए. सीता देवी जी ने भी सारे, एक नस्त्री को छोड़कर सारे गहने ब्राह्मणों को बांट दिया था. ब्राह्मणों ने ये गहनों को स्वीकार किया और फिर वापस लौटा दिया भगवान राम को. ब्राह्मणों ने कहा कि हमें इस भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं, आपका प्रेम हमें प्राप्त हो रहा है. हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार समाज का विभाजन होना चाहिए 4 वर्ण और 4 आश्रम में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. शूद्र ब्राह्मणों का कार्य है कि शास्त्र के आधार पर जीवन को बिताएं और समाज को मार्गदर्शन दें. क्षत्रियों का कार्य है कि वो शासन करें. वैश्यों का कार्य है खेती करें और व्यापार. शूद्रों का कार्य है कि एक 3 वर्ण की सेवा करें. तो भगवान राम ने एक समय ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, मांगो जितनी जमीन चाहिए. ब्राह्मण ने कहा कि हमें उतना ही दीजिए जितना कि हमें आवश्यक हो. आज के ब्राह्मणों का बुलाकर ये कहोगे तो वो क्या कहेंगे, जितना मांग सकते उतना मांगेंगे. एक ब्राह्मण था अयोध्या में जो भगवान राम के दर्शन लिए बिना भोजन नहीं खाता था. भगवान राम थोड़े समय के लिए अयोध्या के बाहर गए थे और लगभग 2 हफ्तों के लिए इस ब्राह्मण ने कुछ भी नहीं खाया. भगवान राम जब लौटे तो उनके भाई लक्ष्मण ने कहा कि इस ब्राह्मण ने दो हफ्ते से कुछ नहीं खाया। तो भगवान राम ने अपनी ही मूर्ति, भगवान राम प्रकट हुए थे महाराज इक्ष्वाकु की परंपरा में, तो अपनी मूर्ति जिसकी उपासना महाराज इक्ष्वाकु इत्यादि कर रहे थे, और वही मूर्ति निकालकर उस ब्राह्मण को दी और कहा कि इस मूर्ति और मेरे में कोई अंतर नहीं, तो तुम इस मूर्ति का दर्शन लो, इनकी सेवा करो। जैसे भगवान प्रकट होते हैं किस रूप में, आचर हरे कृष्ण। हरे ड्रामा के अगर लाइट जाएगी तो ज्यादा मुसीबत होगी। हरे कृष्ण। तो भगवान राम ने ये आचर विग्रह उस ब्राह्मण को दिया और कहा इस आचर विग्रह और मेरे में कोई अंतर नहीं। तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं आचर विग्रह के रूप में, जैसे आप मंदिर में राधा कृष्ण सीता राम लक्ष्मण हनुमान और गोणिताय के विग्रह का दर्शन प्राप्त करते हो। जब हम दर्शन प्राप्त करते हैं, हमारे में मन में ये विचार रहना चाहिए क्या कि इस आचर विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं। तो आज राम राज्य की आवश्यकता है। भगवान राम क्या प्रयास करते पता लगाने के लिए समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। तो भगवान राम अपनी प्रजा की देखभाल कर रहे थे जैसे एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है। तो इस प्रकार के नेता की आवश्यकता है आज समाज में। तो आज हम राम राज्य की चर्चा करते हैं, पर राम राज्य को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के नामों का उच्चारण करना पड़ेगा, भगवान की शिक्षा के आधार पर जीवन को बिताना पड़ेगा, फिर आपको अति राम राज्य प्राप्त हो सकता है। तो हम सबका प्रयास ये रहना चाहिए कि हम चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को आगे बढ़ाएं। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि कली काले नामा रूप कृष्ण अवतार, कलियुग में भगवान प्रकट होते हैं अपने दिव्य नामों के रूप में। और इस शास्त्र में कहा गया है कलियुग में दोष ही दोष है, प्रेम गुण है ये इस कलियुग में, वो क्या है कृष्णा का कीर्तन। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर आप समाज में राम राज्य का सुख चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि सुख शांति प्राप्त हो, तो ये आवश्यक है कि हम भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करें। और हमारे वैदिक साहित्य में अनेक मंत्रों का उच्चारण है, पर यह हरे कृष्ण मंत्र जो है उसे महामंत्र कहा जाता है। तो भगवान राम आदर्शनीय राजा थे और पूरी प्रजा की देखभाल उन्होंने की, जैसे पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। और हमें भगवान राम की शिक्षा के आधार पर जीवन को बिताने का प्रयास करना चाहिए, और ये महामंत्र के उच्चारण के द्वारा हम कृष्ण और राम दोनों का गुणगान कर रहे हैं। ये महामंत्र के उच्चारण से ही अति सुख शांति प्राप्त हो सकती है। तो आप सभी महामंत्र को स्वीकार कीजिए, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा।